ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं स्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम शरणमति। भगवतामृतम् गोपियों के प्रेम की महत्ता बतलाई और अत्यंत चरम सीमा तक बतलाई। बतलाने का तात्पर्य है जीवों के लिए इससे बढ़कर के और कोई चरम भगवत सेवा नहीं है या चरम उद्देश्य नहीं है, यही प्रेम प्रयोजन है। राय रामानंद संवाद में बतलाते बतलाते वर्णाश्रम धर्म से आरंभ किया और फिर आगे चले गए शांत प्रेम, दास प्रेम, सख प्रेम, फिर वात्सल्य भाव, वात्सल्य के बाद में तब फिर गोपियों के भाव और गोपियों में भी प्रधाना गोपियों का भाव, उसके बाद ले आए श्रीमती राधिका का, यही सब बतलाया। जो मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो भक्त हमको जिस रूप में भजन करेगा मैं उसका उसी रूप में प्रतिदान दूंगा। सबके लिए तो मैंने वैसा किया किंतु गोपियों के लिए वैसा नहीं कर सका, इतनी उनकी महत्ता है। इसके बहुत से कारण दिखलाए, जैसे वो सब कुछ छोड़कर के हम में तन्मय हो जाती हैं, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते, न माता को, न पिता को, न सखा को, न भृत्य को, न किसी भक्त को, किसी को मैं छोड़ नहीं सकता। और ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ तक कि अपने शरीर को भी छोड़ सकती हैं, और छोड़ दिया, मैं इस शरीर को भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ। इनकी तो बात ही क्या, कृष्ण और भी बतला रहे, इनकी तो बात क्या, इनके संग से कितने नीच जाति के लोग, कुरूप लोग, जैसे तैसे लोग, इनके संग से मुझ परब्रह्म नंदनंदन के स्वरूप में हमको प्राप्त कर लिया है, तो और की तो बात क्या। हम लोगों के इन गोपियों के संबंध से इसलिए उनकी चरम महिमा को बतला रहे, किंतु कोई ना समझ ले कि जब मैं गोपियों के समान हूं, ये एक उद्देश्य बतलाया कि उच्च से उच्च कोटि का जो भक्त है, उद्धव ही नहीं पा सके, नारद नहीं पा सके, इतना उच्च ये भाव है। फिर हम लोग यदि अभिमान करें कि हम ही लोग वैसे हो गए हैं, तो गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए हमको वैदिक भक्ति के प्रारंभ से आरंभ करना होगा। हम लोगों में अभी वैसा लोग भी हो सकता है कि कोटि कोटि लोगों में से दो एक आदमी को ऐसा लोग हो जाए, ऐसा लोग होना बड़ा कठिन है। इसलिए वैदिक भक्ति के प्रथम चरण से ही आदो साधु संग न तब भजन शिक्षा, द्वितीय साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि, ये सब काम। सबसे पहले आरंभ करना पड़ेगा हरिनाम दीक्षा के बाद में छह वेगों का दमन, छह असत्संगों का प्रत्याग, छह सत्संग को ग्रहण, इस तरह से करना पड़ेगा। जो लोग अपने तामसिक भावों को रोक नहीं सकते, थोड़े में बिगड़ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष संपन्न हो जाते हैं, उनके लिए ये चीजें नहीं। यदि है भी तो भगवान का जो हरिनाम करना है, गुरु वैष्णव की सेवा करना है, ये करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब इन चीजों को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। कृष्ण स्वयं ये बतला रहे हैं। कब बतला रहे हैं? एकादश स्कंद में बतला रहे हैं। एकादश स्कंद दशम स्कंद के बाद में जो आया, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ते नहीं। दशम स्कंद प्रयोजन तत्व है, और एकादश स्कंद क्या है? साधन तत्व है। अब अभिधेय या साधन को साधन तत्व है। जैसे चैतन्य चरितामृत में साध तत्व को बतलाकर आदि तृतीय चतुर्थ में, और तब फिर धीरे धीरे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को साधन तत्व के संबंध में शिक्षा दी, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद, पहले तो वैराग्य इत्यादि के सब राजाओं के सब चरित्र बतलाए, सकामा भक्ति इत्यादि का वर्णन किया, इसमें वो ध्रुव में प्रहलाद में ज्ञान भक्ति का उदाहरण देकर के उसको समझाए। ज्ञान भक्ति और ज्ञान एक नहीं है, इसको भी समझेंगे। इन सबको बतला करके और महाराजाओं के लड़ाई युद्ध और इत्यादि के ये सब चीजें बतला करके, और फिर दशम स्कंद का वर्णन किया। दशम धीरे 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 जब तक ब्रज में रहे भक्ति का, उसमें भी ये बाल्य लीला, पौगंड लीला और अंत में किशोर लीला का वर्णन करके फिर मथुरा चले गए। इसके बाद में एकादश स्कंद में हम लोग कैसे उसको पा सकते हैं बतलाया। पहले बतलाया नारद और महाराज वसुदेव, उसमें नारद जी ने उनको नेमी नव जगेंद्र का संवाद बतलाया। कैसे साधन आरंभ किया जाएगा? नारद जी आकर के प्रारंभ भागवत धर्म किसको कहते हैं, श्रीमद् भागवत में अत्यंत सरल सहज तरीके से सहज रूप में भगवान ने अपने पाने के लिए जो विधियां नियम बतलाया है उसको कहते हैं भागवत। इसलिए यदि दशम स्कंद के चीज को पाना है तो एकादश स्कंद को अच्छी तरह से समझ करके वैसे लाना पड़ेगा। पृथ्वी को आदमी काटते हैं, खोदते हैं, टट्टी पैखाना करते हैं, पृथ्वी कुछ करती है? उसको गुरु बनाया, पेड़ों को गुरु बनाया, बेस्या को गुरु बनाया, किसले बेस्या को गुरु बनाया? 12 बजे रात तक वो देखती थी कि अब कोई आ जाएगा तो रुपये मिल जाएंगे हमें, श्रृंगार बना करके कोठारी में कोठे पर बैठी थी। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, आकर के वो चला जाता था, बस उसको तीव्र वैराग्य। अरे जब तक की आशा है तब तक दुखी, आशा को छोड़ो। इस जगत में हम इस चीज से सुख पा सकते हैं इन सब प्रकार की आशाओं को छोड़ो, उसे कोई भी सुखी नहीं हो सकता है संसार में। हम सोचते हैं बचपन में हम जरा लिख पढ़ जाए तो सुखी हो जाए, कुछ लिख पढ़ लिया तो आगे अंततः ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन भी हो गया तो अब कुछ किसी चीज में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, इत्यादि में, बहुत सी चीजों में हमको देखना है। वो भी हो गया तो नौकरी नहीं मिल रही, बाई चांस मिली भी गई, अब घर बाड़ी चाहिए, शादी होनी चाहिए, वो भी मिल गई, अच्छी पत्नी का मिलना या अच्छे पति का मिलना बड़ा भारी कठिन, वो भी मिल गया, बेटा नहीं हो रहा है संता, यदि बेटा भी मिल गया तो कुपात्र हो गया, तब तक फिर बूढ़े हो गए, फिर जैसे का तैसा रह गया, कोई सुख नहीं मिला। इस तरह से समझना चाहिए संसार में आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। क्या वो कांता की आशा छोड़ करके, ये आएगा हमको पैसा देगा मैं सुखी हो जाऊंगी, उसने आशा की, उसकी काट दी आशा और घर में आराम के साथ में सिंगार उतार करके सो गई। ऐसे ही साधु पुरुष, बुद्धिमान पुरुष संसार से विरक्त इत्यादि होकर के भगवान का भजन करेगा। जिसको आशा है वो संन्यास न ले, त्यागी मत हो। प्रभुपाद ने थोड़ा सा ये सहूलियत दी, जैसे ऐसे व्यक्ति भी आश्रमों में जाकर के सुधर जाएंगे, सत्संग सठ सुधर ही सत्संगत, तो सुधर जाएंगे। किंतु कुछ ऐसे हैं जो वो सुधरते नहीं और बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए सारी शिक्षाएं गृहस्थ आश्रम में रह करके पूरी तरह से सीख करके ही आना ठीक है। कभी प्रभुपाद ने देखा जो कलिकाल में ऐसा घर में भी ऐसा है जो भजन नहीं कर सकते, घर वाले ही भगवत विरोधी हैं, तो फिर कहाँ सीखेगा, इसलिए गृहस्थी के रूप में ही एक मठ को बना लो और उसी में सब सीखो, सीख करके फिर भगवान का भजन करो। वहीं से नारद जी ने आरंभ किया नव जोगिंद्र संवाद से, और इसके बाद में कृष्ण बढ़ते 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 ये सब श्लोकों का अर्थ हम लोग नहीं समझ, हम लोग समझते थे दशम स्कंद ऐसे ही है नीरस की, किंतु दशम स्कंद में ये सब चीजें, अभी जो पीछे वाला भी, इसमें भी योद्धों को जो बतला रहे हैं एकादश स्कंद में कितने गंभीर प्रेम के तत्व हैं। यदि एकादश स्कंद नहीं आता, दशम स्कंद इतना ऊंचा है यह समझ में नहीं आता। इसलिए प्रारंभ से एकादश को अच्छी तरह से श्रवण मनन और अनुशीलन करने की आवश्यकता है, तब हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यदि दशम स्कंद ये एकादश स्कंद का यह श्लोक नहीं रहता, हम समझ ही नहीं सकते थे। करें मत कामा रमणम जार स्वरूपम अभिदो बला ब्रह्ममाम परमाम परमम पाप संगात सत सहस्र सहस्र। हमारे स्वरूप को नहीं जानने वाले, मैं सच्चिदानंद कृष्ण तत्व हूं, मैं रसमय विग्रह हूं, मैं समस्त विश्व का आदि, स्वयं अनादि, समस्त कारणों का कारण परब्रह्म हूं, मैं नारायण इत्यादि, राम इत्यादि, नृसिंह के भी मूल हूं, यहां तक कि द्वारकाधीश इत्यादि का भी बहुत मैं ऊपर हूं, मूल हूं। इस स्वरूप को न जानने के कारण, अथवा जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नहीं सीमा, भगवान का नाम का स्मरण करने से ही आभास के रूप में भी यदि करे भगवान का नाम आसा, तभी मुक्ति इत्यादि तो अपने आप करतल हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं होती। ये सब तत्व जो नहीं जानते हैं भगवत तत्व, अंधिज्ञ होने पर भी पुलिंदी कन्याएं, जंगल में रहने वाली, लकड़ी और गोबर बटोरने वाली, रूपवती भी नहीं, कुरूप, कैसी पुलिंदी कन्याएं होती, काली कुरूप हो सकती हैं, वन्य जाति की नारियां भी, हमारे परब्रह्म स्वरूप को नहीं जाना, किंतु गोपियों के संग से वे ज्ञान रहित होने पर भी तत्व से कुछ नहीं जानने वाली, कोई भी अशुद्ध आचरण नहीं करने वाली, कभी स्नान करती हैं कि नहीं ये भी, हाथ मुख धोती हैं कि नहीं, ऐसी ज्ञान रहित भी होने पर पुलिंदी कन्याएं भी संघ के महात्म से गोपियों का संघ मिला। कौन सा संघ मिला? जगत में इसे अधिक श्रेष्ठ संघ नहीं हो सकता, उनका संघ मिला। और वे हमारे पति गोपियों जैसा भाव उसको प्राप्त कर लिया। कैसा? प्यार स्वरूप माने परकीय भाव, परकीय भाव से जैसे गोपियां कृष्ण का भजन करती हैं, उसको उन्होंने पाया। कब पाया? जन्मांतरे मां के प्राप्त हुई। यहां पर ले रहे हैं टीका में बतलाएंगे ये कब पाया, इसी जन्म में पा लिया या दूसरे जन्म में, किंतु पा लिया। सब लोगों के लिए इसी जन्म में पाना बड़ा भारी कठिन है। इस भाव को हमने देखा है, गोपी भाव को पाने वाले वहां के दंडकारण्य के 60,000 ऋषि लोग कितने करोड़ जन्म में पाए, श्रुतियां कितने जन्मों में पाई, वाल्मीकि को एक राम नाम में सिद्धि होने के लिए कितना समय देना पड़ा, अजामिल की मुक्ति हुई नाम से और गोलोक वैकुंठ गति उसको मिली, इतना सहज मत समझो। पूर्व जन्म में का उसका जरूर कुछ होगा, नहीं तो ब्राह्मण कुल में नहीं आता, पढ़ा लिखा विद्वान नहीं होता। ये दिखला रहे हैं कि पढ़ा लिखा विद्वान होने पर भी कोई अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता, इस चीज को समझो, कोई भी संयम नहीं कर सकता, इसलिए उनकी दुर्दशा हुई। किंतु जैसे तैसे भगवान नाम करते हुए अपने पुत्र के लिए हुए या जैसे भी करते 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 महापुरुषों का संग मिला। कौन महापुरुष? भगवान के परिकरों का संग मिला। ये संग मिलना बड़ा भारी कठिन था। ये काजी ने पूर्व जन्म का कैसा संस्कार था जो उसको संग मिल गया, नाम के महिमा कब दिखलाने के लिए ऐसा हुआ। और फिर देखा जी मैं इस नाम से जब मैंने शुद्ध नहीं किया, सांके तंग पारिहासम सौभम हेलनम हुआ, और ये जम के दूतों को भगा दिया, हमारा हमारी मृत्यु भी टल गई। अब इस चीज को जान करके वहां जाकर के हरिद्वार में और वहां पर साधन करना आरंभ किया। गुरु उनके कौन हुए? वही चारों ऐसे गुरु उसको मिल गए और उनके संग के प्रभाव से, उनके उपदेश से फिर भजन करते करते चला गया। इसलिए ये कह रहे हैं ओहो आश्चर्य है, बड़ी बड़ा आश्चर्य है साधु संघ की महिमा, अत्यंत प्रभावशाली है। कोई शंका मत करो साधु संघ के ऊपर, कितना बड़ा महान शक्तिशाली है साधु संघ। साधु संघ जिसका नहीं है वह भगवान की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती कदापि भी, लाख जन्म लग जाए नहीं मिलेगी। मूल है साधु संघ। साधु संघ तो बहुत से हैं, लाल कपड़ा घेरू लगा लिया, अपने आप दंड ले लिया या किसी से ले लिया, भीतर में जैसे हो ऊपर से साधु बन रहे हैं। इनके संग से होगा? इनके संग से नहीं होगा। जब तक शराब नहीं निराग नहीं होगा तब तक ऐसे वक्ताओं के से कुछ नहीं है। गुरु से लाख गुरु हो नहीं होगा, हरि नाम लाख जन्म करता रहे तभी नहीं होगा, कोटि जन्म, कोटि जन्म, लाख तो हमने कह दिया, वहां पर कोटि जन्म यदि करे श्रवण के साथ तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमदान। और कोई भी सुधर नहीं सकता, उसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। निराग मैंने समस्त विषयों को छोड़ चुका है, किसी भी संसारिक वस्तु के पास उसका अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं है, भजन में चतुर है, प्रवीण है, कुछ उपलब्धि हुई है भजन करके, कुछ उन्नत अधिकार हुआ है। ऐसे महापुरुषों के संग से, निराग वक्ता के संग से, साधुओं के संग से ये होगा, तब साधन बने होकर के इसमें हम पहुंचेंगे। यहाँ पर ये बतला रहे हैं किंतु साधु संघ की महिमा अपार है। यदि साधु संघ ऐसा हो गया, बस ऐसे कर दिया, बस हो जाएगा, साधन भजन भी अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये साधु संघ की महिमा है। नारद जी की देखो कैसे कैसे दुराचारी व्यक्तियों को, कैसे कैसे जड़ व्यक्तियों को, पाप में अनुरक्त लोगों को, और कैसे उनको बना दिया। उनसे भी अधिक अब ये गोपियों की महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं, ओ सखे उद्धव, गोपियों की महिमा में क्या बतलाऊं, मैं नहीं बतला सकता, संभव है नहीं मेरे लिए। उनके संग के प्रभाव से उन पुलिंदियों की जो गति हुई, और पुलिंदियों में इतनी सामर्थ्य, उनका कोई संग करे तो क्या होगा, वो भी हो जाएगा, तो फिर गोपियों की महिमा छोड़ो। जैसे बतलाया है ना, यत किंकरी सुबहुषा खलुकागमानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे विशुभानुजाया तथकेली केंज भवनांगन मार्जनी। अरे उनकी दासियां वो कृष्ण को न चाहती हैं, राधा जी के पास फटकने उनको नहीं देती, और वो हाथ जोड़ करके उनके पैया पड़ते हैं। इन दासियों की इतनी महिमा है तो श्रीमती राधिका और गोपियों की क्या दशा होगी, कैसी स्थिति होगी। तो यहां पर इसी न्याय से ये बतला रहे हैं, जब गोपियों की तो छोड़ो, गोपियों की सहेलियों को छोड़ो, गोपियों में सबसे कनिष्ठ है उनको भी छोड़ो, वन में रहने वाली भील की कन्याएं और ये सबर कन्याएं या पुलिंदी कन्याएं, इन्हीं की देखो ये कहां थी और कहां पर मुझको प्राप्त हो गई, हमारे महिमा का ज्ञान नहीं है, और तभी कैसे प्राप्त हो गई, इसी के लिए कह रहे हैं। सादे संग प्रभाव से पुलिंद कन्या भी नीच जाति की सहस्त्र सहस्त्र, ऐसे ही सहस्त्र सहस्त्र नारियां परम दुर्लभ गति को पाई है इन गोपियों के संग प्रभाव से, जिनके संग की महिमा सुनकर के श्रुतियां कैसे उनको लोग उत्पन्न हुआ, इन गोपियों के कृष्ण के साथ में लीला विहार को सुन करके लोग उत्पन्न हुआ, और ये श्रुतियां कैसी श्रुतियां, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, किंतु ब्रह्मा के मुख से निकली हुई किंतु कान में कहां से आया, कौन ये श्रुतियां हैं, क्या भगवान के वाक्य हैं, निश्वास से आए हुए श्रुतियां हैं, भगवान ही के समान है, ये शाब्दिक रूप है, अक्षर ब्रह्म है ये बल्कि, और होने पर गोपियों की महिमा सुन करके इन लोगों को भी लोभ हुआ, और कोटि कोटि जन्म तक आराधना करके वैसा ही भाव पाया। तो गोपियों की ये महिमा उसी के लिए बतला रहे। मत कामा, इस श्लोक में मत कामा रमणम यार अस्वरूपम विदो अबला, अपने स्वरूप को नहीं जानती, कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानती हैं, अबला हैं, अबला मैंने किसी धर्म में कर्म में कोई भी इनका बल नहीं है, भक्ति का बल नहीं है, साधु संघ का बल नहीं, कुछ भी नहीं, बस गोपियों का संग, वो भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में उनका संग, कैसे कभी कभी बुलवा लेती है, और कृष्ण के साथ में दिल्लगी करने के लिए उनको कभी बैठा लिया, या गोपियों की चरण धूली समझो, अंग धूली कहो समझो, उसके स्पर्श करने से देखो उनकी कैसी गति हो गई। अब ये बतला रहे हैं कि वे अबलागन जाति में बहुत नीच जाति की, कोई छूता नहीं, उनका छुआ हुआ पानी भी नहीं पीता, आजकल तो रेलवे में उनको लगा दिया गया है या इधर उधर बाध्य होकर के आपको पानी पीना पड़ेगा, किंतु लोग पीते नहीं थे। हमारे यहाँ जाति प्रथा बड़ी बुरी चीज है जो बनाई गई, बड़ी अच्छी चीज थी, बड़ी अच्छी चीज थी, इसको लोग समझ नहीं पाते। एक कलरा रोगी, जिसको रोगी है कलरा हो गया, उसके यहाँ पर जाकर के वहाँ पर पानी पी सकते हैं कि नहीं? प्लेग हो गया है वहाँ पर कोई पानी पिएगा कि नहीं? क्यों उसे घृणा कर रहे हैं? घृणा नहीं, वो श्वास प्रश्वास में कीड़े जाकर के, पानी में कीड़े जाकर के आपको उसी समय में हो जाएगा, उसी समय में मरेंगे। ये तो स्थूल चीज है, और विचारों के कीड़े इतने जबरदस्त हैं कि जन्म जन्मों को खराब कर सकते हैं। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवत विरोधी हैं, दुराचार है, दुराचार माने कृष्ण की भक्ति से बहुत दूर हैं, उनका छुआ हुआ पानी लोग नहीं पाते, एक लाइन में बैठ करके नहीं, क्योंकि उनके दुर्गुण उसमें आ जाते थे। छुआछूत बुरी चीज नहीं, किसी से घृणा नहीं, किंतु उसके अंदर में जो उसके विचार में जो कीड़े हैं वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए पहले ये सब विचार होता था, खान पान इत्यादि का विचार होता था। एक वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री, उसके हाथ से बनाया हुआ या उसके कमाए हुए अर्थ से आप लड्डू पूरी कचौड़ी या मोहन भोग खाइए, क्या होगा? जो खाएगा उसकी चित्तवृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये आजकल विचार नहीं होता, इसलिए संसार कुछ भटक रहा है और दुराचारी हो रहे हैं। यदि ये सब विचारों का ये ठीक होता, आज जैसे भारत की दुर्दशा हो रही है, विश्व की ये नहीं है। गुरु महाराज जी कह रहे थे कंप्यूटर में ये सब आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर की ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन हॉल थिएटर जूता पहन करके नहीं जा सकते। अच्छा, कंप्यूटर रूम में नहीं जाने देंगे? क्यों क्यों नहीं जाने देंगे? कोई भी बड़े से बड़े आदमियों नहीं घुसने देंगे? क्यों? ये कोई घृणा नहीं है, ये स्थूल कुछ परमाणु होते हैं जो हमारे लिए हर्ज कर सकते हैं और ऑपरेशन को गड़बड़ कर देंगे, या कंप्यूटर ही बीमार पड़ जाता है। अब कुछ दिन आएगा, कुछ दिनों के बाद में, जब फिर वैसे ही, जो हमारे जो भारतवर्ष में जो विचारधाराएं थी वैसे ही नहीं होने से शांति जगत में नहीं होगी, लोग समझेंगे नहीं। आजकल का नियम ये है कि ऊपर वाले को भ्रष्ट करके नीचे लाओ, उनको मांस मछली खिलाओ, शराब पिलाओ, और नीचे वाले जो ऐसा करने से मिलाओ। ये नहीं कि नीचे वालों को जो शराब पीते हैं, दुराचार करते हैं, उन लोगों को सुधार करके ऊपर ले जाओ। ये पहले था, सबको ब्राह्मण बनाओ, भक्त बनाओ। आइए नहीं कि ब्राह्मण को और भक्त को ब्राह्मण बने क्या, विचार के द्वारा उनके ब्राह्मणत्व को छुड़ा करके सबसे बराबर बनो। आजकल ऐसा ही हो रहा है इस जगत में, और व्यभिचार मार काट ये सब फैल रहा है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं, हम अपने प्रसंग से हट करके यहाँ पर नीचे आकर के बतलाते हैं। क्यों लोग नहीं समझते हैं इस चीज को? इसलिए नहीं तो हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है, हम उसको बतलाते, किंतु समझने वाले बहुत इन्हें गिने हैं। इसलिए इस चीज को समझो, जिनको अस्वरूप वही जारम, जारम को ले लो, रमणम जारम मत कामा, रमणम जारो एक एक तरफ ले लो, और अस्वरूप विद अबला इधर में लो। लेकर के तब इसका अर्थ ये बनता है कि जो लोग हमारे स्वरूप को नहीं जानते हैं, कृष्ण परब्रह्म है, नारद ऋषि उद्धव इत्यादि बड़े बड़े लोग इस चीज को जानते हैं, किंतु ये जो अवला नारियां हैं, जो नीच जाति जी हैं, और कैसी हैं, बनचरी हैं, रूप भी नहीं है, साधु संग का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, सदाचार भी नहीं है, सदाचार से भी बहिर्गत, आचार विचार भ्रष्ट, टट्टी करके फिर स्नान करने की जरूरत है, या टट्टी पहने हुए कपड़े को कोई चेंज करना है, ये भी ज्ञान नहीं है, और ऐसी ये भिलनी या पुलिंदी कन्याएं, अथवा हमारे दर्शन से भी वंचित रहती हैं। कृष्ण को दर्शन करती हैं, बहुत दूर से यदि कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो दर्शन भी संभव नहीं। मेरे सौंदर्य का ज्ञान भी जिनको नहीं है, ऐसी ये कदाचित लकड़ी और कंडे बीनने के लिए जंगलों में जाती हैं। टोकरी ले लेंगी, टोकरी लेकर के चली जाती हैं। लकड़ी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है उसको ले आती हैं। ये इनका सौभाग्य तो देखो, वन में गई इस काम के लिए और हुआ क्या, गोपियों के अंगों का कुमकुम जो तीन में लगा हुआ है, ओष बिंदु के ऊपर जो कृष्ण के चरणों से उसमें लग गया, केवल वैसा ही उन लोगों का संग उन्होंने देखा और उसको काम में परवश होकर के ऐसे लेकर के अपने मुख में अपने अंगों में लपेट लिया। ये गोपियों का संग, डायरेक्ट संग की बात छोड़ो, ऐसा संग बहुत